that. Gracias, Jimmy. Estás perdida, Jimmy, la que está en el diario. Pero mi madre, mi hermano, 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 उन्होंने बुला के लाओ कौन है क्या नाम है उसका साहब के लिए मसूद रबी अल्लाह ताला उन्होंने कहा अरे उनको पूछना क्या ना ये तो मतलब है साहब रबी अल्लाह ताला उनके साहब रबी अल्लाह ताला उनकी दर्जा के नहीं थे सब अल्लाह ताला कानून की फितरत है जो जिसकी फितरत बना दी हैसियत बना दी उसी तरफ से नमाज पढ़ेगा उसका खुशी होगी वही है ये सब कारिम है आलिम है मुसन्निफ है मुअल्लिफ है साहिब तरीकत है मोहल्ले में रहते हैं मस्जिद के करीब अब उनके ऊपर मस्जिद के आदाब मोहल्ले की मस्जिद के आदाब बहुत होते हैं अजान सुनने के बाद कोई काम नहीं मसनून तरीके से मस्जिद में आते हैं सबसे अव्वल में बैठे हुए हैं याद इलाही मशहूर है तकबीर मूलम की शरीफ तहारत काबला के साथ जाओ और मस्जिद दुनिया को की बात ना करो जब तक करो तकबीर करो मुसलत है क्योंकि ये शरायत आदाब मस्जिद में दाखिल है जो बातें मैंने अर्ज की और एक शख्स है कि जोर की नमाज डेढ़ बजे होती है वो जल्दी जल्दी घबराया हुआ आया फैला और उसने मस्जिद के द्वारे को छोड़ा और दौड़ता हुआ आया तंजा किया जल्दी जल्दी वजू किया और जब तक नमाज खड़ी होगी ये भी शरीक हो गया आप बताओ किस शख्स की नमाज कामिल है वो जो घबराया हुआ आया कि दिल से नहीं है दिमाग से नहीं आप रहा है या वो साथ में बैठे हुए हैं कुछ है ना सर ना कि हर एक की अपनी हैसियत है एक तो प्राजत है आदिम है साहब तरीके से सारी चीजें बता दी हैं ये तो मस्जिद के आदाब की रियायत रखते हुए पहले आएंगे आप इत्मीनान से बैठेंगे सारा काम जो है बिल्कुल तकीब से करें एक वो बेचारा जो है काम में मशगूल है और भागा भाग आया घबराया घबराया है दिल कहीं लिबास कहीं हाँप रहा है लेकिन जल्दी जल्दी उसने अपना फैला छोड़ा दरवाजे पर और संजा किया रुजू किया और जल्दी जल्दी उसने है और नमाज खड़ी आके शरीक हो गया बताओ किसकी कौन नमाज वो तो घबराया हुआ है कि दिल नहीं है नमाज नहीं आप रहा है कि वो साहब जो बैठे हुए हैं शायद दिल के सदार दोनों हैं कामिल नमाज को इसकी इसकी नमाज में शक हो सकता है इसके हजूर पर में कोई शक नहीं क्यों कि इसकी नमाज की अजमत और मकसद का एहतराम उसको फैलता है आया है तो मकसद के एहतराम ही तो आया है उसको ईमान का ये दर्जा हासिल है और खुशी खुशू भी हासिल है खशियत इलाही भी हासिल है अगर ये चीजें ना होती तो क्यों आता क्यों छोड़कर आता अपना कारोबार और दरवाजे पर अपना सरमाया क्यों छोड़ दिया कि पहले भी तो सामान है सरमाया है उसे छोड़ दिया उनको आगे के लिए ये तो कुर्बानी की है अपना सरमाया वहां को छोड़ा है अपने काम को छोड़ा है अपने कारोबार को छोड़ा है आप सब आया भाग सब आया है इसको भी कुछ होना चाहिए तो हर शख्स की हैसियत के मुताबिक कानूनी से कर दिया इससे इस्तेबाल कर दो कि इसकी नमाज कामिल है ना इसमें वसवसा है ना इसमें खतरा है जैसा किसी का दर्द वैसा इसका मतलब है अगर वजीरे आजम से जरा सी गलती हो गई लगभग हो गई पकड़ हो जाएगी क्यों जितना बड़ा होगा उतनी जिम्मेदारी उतनी पकड़ जल्दी अक्सर देखा मुकाबिल में जाहिल लोग मजदूर प्रेशर आ जाते हैं पूछो तो खुशू खुशू क्या चीज है ईमान का दर्जा क्या है जवाब मिलेगा आपको मुबारक हो हमें नहीं मालूम ہم تو اللہ پاک کی حاضری اللہ پاک کے حاضری دینے آ جاتے ہیں. ساتھ ساتھ بندہ کیا رہے تو یہ ان کے ایمان کا درجہ ہے. یہ ایک ایسا درجہ ہے مومن کو حاصل ہے, کوئی مومن اس سے خالی نہیں. سچ پوچھیے کہ جہل لوگ جن کو جہل کہتے ہیں ان کا ایمان ہم سے کہیں زیادہ قریب ہوتا ہے. بے کیوں چلا ابھی کسی مسجد پر حملہ ہو گیا ہم لوگ جلدی سے گھروں میں چھپ جائیں گے اور سب سے پہلے ہم لوگ جان جائیں گے. یعنی وہ اللہ کے گھر کی ایسی جانے قربان کر دیں گے. ہم سوچیں گے کہ بیوی بچے کہاں جائیں گے, کیا ہوگا کیا نہ ہوگا, ہزاروں واقعات آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں. والذین آمنوا اشد عبر تو چہل خود شدید کے ساتھ مار پڑ رہا ہے. یہ سادہ سادہ بنتا ہے مزدور سے ہے, یہ حب شدید کے ساتھ مار پڑ رہا ہے. یہ میں نے تشریح نہیں کسی کی صاحب ایمان نے عارفین کو علماء کو دے لیا ہو کیا رحمت ہے. حضرت تعلق ہونے کے بعد ہم عجیب سی باتیں سمجھ میں آئی ہیں. ایک شخص نے کہا ہم سے کہ نمازیں پڑھتے ہیں اتنے عرصے میں نہ احسان کا معنی سمجھ میں آیا, نہ حضور حاصل ہوا, نہ خشوع, نہ حضور قلب خارج کر پائی. ہم نے کہا نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہا کرو اے اللہ اگر نماز میں احسان کا درجہ خشوع و خضوع ہے, حضور قلب ہے, تو مجھے کچھ حاصل ہوا. اور سنتے ہیں اس کے بعد نماز نہیں ہوتی کیا میری خالی مت رہ جائیں گے. اگر وہ ضروری ہے تم اب تک ویسے پڑھ کر آؤ, عمر پر ایسے پڑھو گا کوئی تغیر بھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے, نہ کوئی تغیر زیادہ کرنے کی قابلیت ہے. اس کے تو معنی بھی سمجھ میں نہیں آتے تو کیا نماز کی کام تمام معذ ہوا معاف سے میں محروم رہوں گا. اللہ پاک سے یہ پڑھا میں نے کہا میرے کہنے سے 40 دن نماز پڑھو وہاں سے جواب ملے گا کہ جو کچھ تیرا دعا مانگنا ہے وہ میرا پل بھی پڑھا. اللہ والے سنبھالتے ہیں کہ 40 دن تک میرے کہنے پر نماز پڑھو اور نماز کے بعد یہ اللہ سے دعا کرو یہ گاتے چلو اس قسم رب دو. اس سے کیا ہوگا کہ تیرا دعا مانگنا یہ حضور قلب بھی تو ہے جو چیز تیرے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو مجھ سے مانگ رہا ہے, میں نے سن لیا سب کچھ مجھے حاصل ہے. اگر حاصل نہ ہو میں تو منگتا ہی نہیں, کیوں کہ تجھے ان چیزوں کی قدر ہے اور ہم سے مانگ رہا ہے. یہ ہم جانے ہمارا کام جانے تجھے سب کچھ حاصل ہے. بھائی بڑی تسکین کی بات ہے, ہمارے حضرت طبیب ہیں, معالج ہیں, سب کا سناتے ہیں. حضرت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور حضرت جواب دیتے ہیں. اس کی تدبیر ہے تاکہ وہ راستے پہ لگ جائیں, جب لگ جائیں گے چھوڑ دیں گے. جو آپ اپنے آپ منٹو ہم بھی جانتے ہیں وہ راستے کو لگانا چاہتے ہیں. ایسی اچھی بات سمجھ میں آئی, وسوسے سے خطرات ان کا بھی علاج ہے. تبھی اس کو اس طرح لگا لو, اس طرح یہ کر لو, اس طرح یہ کر لو, مانا کی مدد کر لو, ارکان کی مدد کر لو. بات و خاص جواب خوب کو بڑھتا ہے اور تبھی خود ہی خوش ہو جاتی ہے. مجھے وقت سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں بڑے شہوانی اور لفسانی تصورات خیالات آتے ہیں, سب نے کا کیا نقصان ہے. نماز کیا ہوئی, تمام گندے خیالات رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, کیا کہ بس تصورات اور خیالات ہی گندے ہیں. مثال پہلے بھی سمجھا, اس کو دوبارہ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ پیٹ میں سوزلا بھرا ہے, مسالے میں پیشاب بھرا ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں. کبھی کسی نے کیا جی گندگی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, پیٹ میں پتلا بھرا ہے, کسان پیشاب, کسان میں نہیں پیشاب بھرا ہوا ہے, اور جس سمے جگہ جگہ پھول چل رہا ہے جو ناپاک ہے. پہلی بات آ چکی نا کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جب تک ان کا اخراج بھی ہوتا پتا کیا ہے پاک ہے. پیٹ میں پخانا ہے نکلا نہیں تو یہ پاک ہے, نکلے وہ ناپاک ہو رہا ہے. پیشاب سامنے میں بھرا پڑا ہے, نکلا نہیں تو پاک ہے, نکلے گا تو پھر وضو کو ناپاک ہو جائے. جو گندگی نکلی ہے وہ نکل گیا بہ گیا تو وضو تو پاک ہو جائے, لیکن جب تک اپنے محل میں موجود ہے پڑا ہوا ہے. کبھی اس کا کسی نے ذکر کیا کہ میں کیا کروں کہ نماز کیسے پڑھوں پیٹ میں پسانا بھرا ہوا ہے. تو یہاں اس کو فرما رہے کہ پیٹ سے خراسان ہو رہا ہے अरे इसका भी जिक्र किया करो, चलो ना पे अच्छा पढ़ रहे नापाक की हालत में, ये नापाक चीजें भरी हुई हैं, माटी तौर पर ये भरनी है और ख्याल ये तो आते जाते रहते हैं वो भी हैं। मैंने कहा उनकी शान करीमी देखो, अल्लाह की शान रहमत देखो, कहते ये सब गंदगी तुम्हारे पेट पे भरी हुई है, हमारे हुक्म से पाक है, नमाज पढ़ो इस नापाकी के साथ, गलाजों के साथ तुम्हारे पेट में हो, आंखों में मसाले हो, इस पर भी हमने अपना कुर्ब अता करवा दिया। सर सिजदे में जा रहा है और एक गंदगी अंदर भरी हुई है और हम इस पर भी अपना कुर्ब अता करवा रहे हैं। इसी तरह से अल्लाह गंदे ही थे, पहले भी जिक्र सुनाया था कि ये गंदे ख्याल जब तक अंदर में है आप पाक हैं, नमाज पढ़ते हैं। हाँ जैसे ये गंदगी जिसमें से निकली तो नापाक हो गए, वुज़ू कर लिया पाक हो गए, ऐसे ये गंदगी अगर निकली यानी इन गंदे ख्याल पर अमल कर लिया तो क्या हो गए, नापाक हो गए, तौबा कर लो पाक हो जाए। जैसे वुज़ू कर लिया पाक हो गए, गंदगी निकली वुज़ू किया पाक हो गए, ये गंदे ख्याल ने अमली शक्ल इख्तियार कर ली, मकलूब हो गए तो गंदे हो गए तो क्या कर लो, तौबा कर लो पाक। तो इन ख्यालात के होते हुए जब उन्होंने इजाजत दी है कि नमाज पढ़ो तो सब पाक हैं, क्योंकि उनके लिए पाक हैं, अगर नापाक होते तो फिर क्यों नसीब होता, गोया कभी नसीब ना हो सकता, नापाकी में अल्लाह ताला को नसीब ना होता, नापाकी के हाथ मस्जिद में अल्लाह घर में नहीं जा सकते, सजदा कैसे कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला इसको पाक कर दिया है कि जितनी इजाजतें माजी हमारे अंदर हों, लेकिन हम क्या हैं, अपाक हैं, पाक हैं भाई, पकाना पेट के अंदर है, मसाले पेशाब है और रगों में खून है, हम पाक हैं ना पाक हैं, पाक हैं भी नमाज के सारी चीज मौजूद है ना, इसलिए के फरमा रहे हैं कि ये ख्याल है, ये जज्बात है, जब तक ये अंदर है आप पाक हैं, आपको इजाजत है कि रुकू करो, सजदा करो, दुआ मांगो, सब इजाजत है, ये उनका धर्म है, इसलिए शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इस गंदगी के बावजूद जो तुम्हारे पेट में है नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, अब सजदे करो, रुकू करो, हाथ उठाओ, दुआ करो, उनका शुक्र अदा करो कि तुम गंदगी को लिए फिर रहे हो, इसी तरह गंदे ख्याल को लिए फिरते हो। अगर ये ख्याल गंदे होते, शहवानी नापाकी में नमाज अदा न होती, सज्जे की तौफीक कभी ना होती, तो अल्लाह ताला अपना कुर्ब कभी अता ना फरमाते, उनका कुर्ब ही इसकी अलामत है कि सब पाक है, यानी इन वसावत से गैर इख्तियारिया जो खुद ब खुद आते कितने गंदे क्यों ना हो, इनका इलाज किया कि इनको पड़े रहने दो, इजाजत है कि नमाज पढ़ो, इंशाल्लाह नमाज के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं उस पर तवज्जो दें, जो आप अरकान अदा कर रहे हैं उन पर आप तवज्जो दें, जो सजदा कर रहे हैं रुकू कर रहे हैं इस पर सजदा दें, इंशाल्लाह इसी से कुर्ब हासिल होगा। आज एक शख्स का ख्याल आया, उसने लिखा है कि तीन तीन किस्म की नमाज पढ़ता हूँ, मैं वाकिफ नहीं, जावेद अकबाल उसका नाम है, पहली दौरे जो नमाज की होती है एहसान करा जाए, दूसरी वो नमाज जिसमें कुरान शरीफ के माना पढ़ जाती है, तीसरी नमाज है जिसमें अरकान की नजर जाती है, इसके अलावा कोई और कीमियाई नुस्खा हो तो बताएं, अगर कोई और कीमिया का नुस्खा आपको बतलाएं, हर उलमा से मुखातिब हुए, उनसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा, ये खत सुनाया उलमा मदीने बैठे थे उनसे पूछा, समझते हैं कि बचपन में पढ़ा था, पहले जमाने में अच्छी किताबें पढ़ाई जाती थी, अब तो नहीं, एक मुलामा की अंगूठी थी, एक सोने की अंगूठी थी, दोनों मुकाबला हुआ, मुलामा वाली कहती थी मुझ में ज्यादा जला है, ज्यादा कटी है, और तुम क्या हो, मैली मालूम होती हो, जब तक रगड़ी तुम्हारी चमकदार नहीं होती, असली ने कहा जब पाव दिया जाएगा पता चल जाएगा मुंह का, भाई तीन तरह की नमाज पढ़ने वालों को जवाब दो, कोई और कीमिया का नुस्खा हो तो बतलाए, मैंने कहा कीमिया का नुस्खा पूछ लो ये कि नमाज की पाबंदी करो और अरकान नमाज नमाज को मसनून तरीके से इस्तेमाल से अदा करो, खुशू खुदू का इस्तेमाल जिससे हो जाए इसका शुक्र अदा करो, ये तीन तरह की नमाजें पढ़ते हो, जब तौब दिया जाएगा वो हो जाएगा पक्का। ये ज्यादा देर पर नहीं है, ये फितरत के खिलाफ है। अभी कुछ लम्हा बेफिक्री की हासिल होंगे, मश्क कर ली, जरा सी कलस हो गया कार की, घर वालों की बीमारी की, तो सारी तीनों नमाजें हो जाएंगी। यानी इन ख्यालात की इन चीजों के पीछे ना पड़ो, अरकान को सुन्नत तरीके के मुताबिक अदा करो, जो पढ़ रहे हो वो सोच सोच कर पढ़ो। तो पहला दर्जा खुशू का तो यही है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं हकीमुल उम्मत हमका फरमाया करते कच्चे हाथों की तरह करो, सोच सोच के दा करो और ख्याल की तवज्जो ना दो, बस पढ़ते रहो। इस पढ़ते रहने ही से इंशाल्लाह ध्यान भी जमने लगेगा। और फिर चूंकि फरमा दिया गया है कि इसमें भी आपको, क्योंकि खड़े किसके सामने हैं, किसके दरबार पे खड़े हैं, किसका कलाम पढ़ रहे हैं, किसकी है किससे आती है, रूह किस तरफ है, सजदा किसके साथ कर रहे हैं, तो ये आगाह जो है अल्लाह से आगे झुक रहे हैं। इंशाल्लाह इस तरह पढ़ते रहने से भी नमाज की आदत पड़ेगी, आदत से इखलास आएगा, इखलास से फिर ज्यादा नमाज बनेगी। अल्लाह हमें पाबंदी से अदा करते रहने की तौफीक अता फरमा दे। तो मेरे बुजुर्गों, ये चंद घड़ियां रह गई हैं, गिनती के चंद दिन रह गए हैं, इसमें कोशिश करके अपनी नमाज पर मेहनत करके इसको शानदार बनाने की जो कोशिश हम कर सकते वो तो करें, और पाबंदी की नियत तो करें, तहिया तो करें, अल्लाह से मांगे तो सही। इंशाल्लाह अभी मौसम है बीज डालने का, अल्लाह हमें अच्छे अमाल का बीज डालने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे, और बुरे अमाल से बचने के बीज डालने की हिम्मत अता फरमा दे। यानी इन अय्याम में अगर मश्क कर लेंगे अल्लाह की हर अताअत को करने की, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ने की, इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी इस पर हमें हमेशा अता फरमाएंगे। अल्लाह हमें इन घड़ियों की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا خير يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا شر وشر. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.